नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 18,77,000 नए मकानों को मंजूरी मिली। बिहार समेत 6 राज्यों को होगा लाभ। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा। और गंगा, पुनपुन और सोन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट के बावजूद अब भी खतरे के निशान से ऊपर। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देश के लिए एक वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई बैठकें करेंगे। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान शामिल होंगे। श्री मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ भी बैठक में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ब्रिक्स बैठक का थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के द्वितीय चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। इससे शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह निर्णय नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने की। बैठक में PMAYU द्वितीय चरण के लाभार्थी आधारित निर्माण और साझेदारी में किफायती आवास श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 29,000 अतिरिक्त मकानों को भी मंजूरी दी गई है। यह अनुमति बिहार, असम, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के लिए है। श्री सिंह ने राज्यों से PMAYU के द्वितीय चरण के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन तथा निगरानी के लिए मिलकर प्रयास करने को कहा ताकि योजना का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इसके तहत प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों का यूनिवर्सल लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी यूएलपीआईएन दिया जाएगा। इसे भू आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जमीन का नक्शा, अधिकार रिकॉर्ड और पंजीकरण संबंधी जानकारी एक साथ उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत इस व्यवस्था के लिए 565 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया है। श्री चौहान ने कहा कि भू आधार जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण नहीं होगा। स्वामित्व का निर्धारण संबंधित राज्य के वैध भूमि रिकॉर्ड और कानून के आधार पर ही होगा। राज्य में खरीफ 2024 के लिए 1,17,708 किसानों के खाते में फसल क्षति सहायता के रूप में 104,46,46,405 रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे गए हैं। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि यह भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया गया। श्री यादव ने बताया कि रबी 2024-25 के लिए पात्र किसानों के आंकड़ों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के बाद सहायता राशि जल्द भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा और अन्य कारणों से फसल की उपज में कमी आने पर किसानों को यह सहायता दी जाती है। वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लागू होगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुंच बढ़ाने आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
राजस्व और भूमि सुधार विभाग जमाबंदियों में सुधार के लिए 45 दिन का विशेष अभियान चलाएगा। अभियान के दौरान खाता, खेसरा, प्लॉट और रैयत के नाम में दर्ज त्रुटियों को दूर किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर निशुल्क भूमि मापी भी कराई जाएगी। विभागीय मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि अधिकारियों और लोगों के बीच संवाद की कमी के कारण ऑफलाइन आवेदनों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अंचलों के कामकाज की गुणवत्ता पर मुख्यालय से प्रतिदिन निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की जा रही है। सरकारी भूमि का लैंड बैंक तैयार करने के लिए जिलों की सभी प्रकार की सरकारी भूमि को इसमें शामिल किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति राज्य के 29 जिलों में वज्र गृह सह परीक्षा भवन का निर्माण कराएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद इसके लिए 33 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पहले चरण में 12 स्थानों पर वज्र गृह और परीक्षा भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इनमें रोहतास, लखीसराय, बेगूसराय, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, वैशाली, कैमूर, नालंदा, जमुई, कटिहार, नवादा और मधेपुरा शामिल हैं। इन भवनों के निर्माण से प्रश्न पत्रों और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित भंडारण के साथ परीक्षा संचालन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत के लिए सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों में विशेष पीठों का गठन किया गया है। लोक अदालतों में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। परिवहन मंत्री दामोदर राउत ने वाहन मालिकों से लंबित चालानों के निष्पादन के लिए लोक अदालत आने की अपील की है।
प्यारे बिहार वासियों, 12/9/26 को राष्ट्रीय लोक अदालत सभी जिलों में लगाया जा रहा है। परिवहन विभाग के 90 दिन से पूर्व के चलान हैं, उनकी सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में होगी, उन चलानों पर फैसला आएगा। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस योजना का आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और अपने ई चलान से मुक्ति पाने का काम करें।
प्रदेश में गंगा, पुनपुन और सोन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है, लेकिन गंगा और पुनपुन नदी कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर दरधा नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1.23 मीटर ऊपर दर्ज किया गया। मनेर में 9 सेंटीमीटर की कमी के बावजूद नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 81 सेंटीमीटर अधिक है। दीघा घाट पर 6 सेंटीमीटर की कमी के साथ गंगा खतरे के निशान से 63 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर पिछले 24 घंटे में 39 सेंटीमीटर कम हुआ, लेकिन अब भी ये खतरे के निशान से 1.41 मीटर ऊपर बह रही है। गंगा, गंडक, कोसी और सोन नदी में जलस्तर घटने के साथ ही तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा भी बढ़ गया है। पानी कम होने के बाद नदियों की धारा कई स्थानों पर दबाव बना रही है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। स्थानीय अभियंता के अतिरिक्त विभाग के नियंत्रण कक्ष से भी निगरानी रखी जा रही है। इधर नेपाल की ओर से आने वाली पानी में उतार चढ़ाव के कारण कई नदियों की धारा में बदलाव होने की संभावना है। बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी 2 दिवसीय अररिया दौरे के दूसरे दिन आज फारबिसगंज में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू होने वाले पार्टी के सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंकों में हुए हड़ताल पर लिखा है, बिहार में बैंक हड़ताल से 50,000 करोड़ रूपये का कारोबार ठप हुआ। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, इंटरनेट का उपयोग करने में बिहार सबसे आगे, यूट्यूब पहली पसंद। दैनिक भास्कर ने जदयू का नाम जनता दल नीतीश करने की चर्चा पर लिखा है, जदयू में नीतीश के नाम पर रार। इधर राजद बोला उनका अंत करीब। प्रभात खबर लिखता है, इंजीनियर के पास मिली 4 करोड़ की अवैध संपत्ति और 76 लाख रूपये के जेवर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 18,77,000 नए मकानों को मंजूरी मिली। बिहार समेत 6 राज्यों को होगा लाभ। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा। और गंगा, पुनपुन और सोन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट के बावजूद अब भी खतरे के निशान से ऊपर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन 2:00 PM प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।